नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश भर में 50 स्विफ्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा विभाग ने एमओयू साइन किया। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्रों ने विकसित किया विधि सहयोगी मोबाइल ऐप। लोगों को कानूनी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगा ये ऐप। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वाटरबेल बजाने के निर्देश दिए। और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में 50 स्विफ्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग और कॉन्विजिनियस फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत इन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक तकनीक युक्त डिजिटल अवसंरचना विकसित की जाएगी। साथ ही फाउंडेशन छात्र छात्राओं को 1000 लैपटॉप भी वितरित करेगी। स्विफ्ट स्कूलों की स्थापना के लिए विभाग ने स्कूलों चयन कर लिया है। एक रिपोर्ट।
विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को तकनीकी आधारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में समग्र शिक्षा और कॉन्विजिनियस फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। इसके तहत प्रदेश भर में 50 स्विफ्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। पौड़ी और चंपावत के 19 तथा देहरादून और हरिद्वार जिले में 6 विद्यालय इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि स्विफ्ट स्कूल एक एकीकृत विद्यालय परिवर्तन मॉडल है, जिसमें व्यक्तिगत शिक्षण, कक्षाओं में आधुनिक तकनीक का उपयोग, शिक्षकों को डेटा आधारित सहायता के साथ ही डिजिटल अवसंरचना का समावेश होगा, जिससे छात्र छात्राओं को उनके सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षा देने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षकों को डेटा आधारित जानकारी मिलेगी, जिससे वे कक्षा में अधिक प्रभावी अध्यापन कर सकेंगे। स्विफ्ट स्कूलों में तकनीकी के माध्यम से बच्चों में सीखने की कमियों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रवि सिंह।
राज्य में चार धाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन हो रही है। देहरादून जिले में यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी समीन बंसल ने ट्रांजिस कैंप ऋषिकेश में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने चार धाम यात्रा ट्रांजिस कैंप में पंजीकरण कक्ष एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 काउंटर और ISBT पर 6 पंजीकरण काउंटर लगाए गए हैं। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि पंजीकरण के लिए 30 मोबाइल टीमें लगाई गई हैं, जिनमें 25 टीमें दिन में तथा 5 टीम रात्रि से प्रातः तक लोगों का पंजीकरण करेंगी। ऋषिकेश एवं हर्बर्टपुर यात्रा पड़ाव के लिए 6 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 3 टीमें ऋषिकेश और 3 टीमें हर्बर्टपुर में तैनात रहेंगी। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्रों ने आम लोगों को कानूनी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधि सहयोगी मोबाइल ऐप विकसित किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह के समक्ष इस ऐप का प्रस्तुतीकरण दिया। एक रिपोर्ट।
कुलपति ने बताया कि विधि सहयोगी एक AI सक्षम मोबाइल ऐप है। यह लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विधिक सहायता तक पहुँच आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त करने के अलावा आवश्यकता पड़ने पर अधिवक्ताओं से संपर्क भी कर सकेंगे। भविष्य में इसमें ऑनलाइन परामर्श, केस ट्रैकिंग, दस्तावेज प्रबंधन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। कुलपति ने बताया कि इस पर कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ऐप को तैयार करने वाली टीम और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नवाचार समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से धीरेन्द्र दत्त गैरोला।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वाटरबेल बजाने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थी गर्मियों के मौसम में नियमित अंतराल पर पानी पी सके। ग्रीष्मकाल में हीट वेव की तैयारियों को लेकर सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन, ओआरएस एवं आवश्यक दवाओं का भंडारण किए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाव संबंधी व्यवहारिक जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में बढ़ते तापमान एवं संभावित हीट वेव की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को गर्मियों के मौसम में जिन भी क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो वहां सभी निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड उत्तराखंड सहित देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखंड को 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर स्थित कृषि केंद्रों के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
यहाँ पर मखाने की खेती एक स्टार्टअप के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है और आज जिस तालाब को, जिस जमीन को लोग समझ रहे थे कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, इन बेटियों ने बिहार जाकर, क्योंकि मखाना विशेषकर बिहार में होता है, उसके लिए अभी मखाना बोर्ड भी वहाँ पर बना है, लेकिन आज इस नवाचार के माध्यम से इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है और हमने अभी 1 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। तो मखाना उत्पादन के लिए जो मखाना कृषक हैं, आज कई चीजों का दरियात हमारा प्रदेश पूरे देश को कर रहा है। आज हनी के क्षेत्र में हमारा छोटा सा राज्य 8वें स्थान पर है, मशरूम के उत्पादन में हम 4थे स्थान पर है।
चारधाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ अलर्ट अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले ही जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और संभावित जोखिमों को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में विशेष रूप से उन दिक्कतों को लेकर जागरूक किया जा रहा है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सामने आती हैं। इनमें सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन की कमी, थकान, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और अचानक मौसम बदलने से होने वाली परेशानियां शामिल हैं। विभाग का मानना है कि यदि यात्री पहले से स्वास्थ्य जांच करा लें और जरूरी सावधानियों का पालन करें तो यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकती है। जिन राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं वहां स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड में एक बड़ी पहल सामने आई है। प्रदेश की महिलाओं से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आगे आने की अपील की जा रही है। इसके तहत महिलाओं से 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी सहभागिता दर्ज कराने का आह्वान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, मैं उत्तराखंड की समस्त मातृशक्ति से निवेदन करती हूं कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान से जुड़ें और मिस्ड कॉल देकर अपने समर्थन को दर्ज कराएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में 50 स्विफ्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा विभाग ने MOU साइन किया। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्रों ने विकसित किया विधि सहयोगी मोबाइल ऐप, लोगों को कानूनी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएगा यह ऐप। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विद्यालयों में नियमित अंतराल पर वाटर बेल बजाने के निर्देश दिए और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।